लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे अपने घरों का पलायन करने वाले आप प्रवासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो युद्ध अथवा भूख के कारणवश खतरों और हिंसा से भरी यात्राएं करने के लिए मजबूर होते हैं, ताकि मेजबान देशों में उन्हें स्वागत सत्कार और नए अवसर मिल सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय है रविवारीय देवदूत प्रार्थना के पूर्व संत पापा फ्रांसिस का दिया गया संदेश, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने रविवारीय देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिए गए अपने संदेश में जीवन की कठिनाइयों में यीशु के संग संयुक्त रहने का आह्वान किया। संत पापा फ्रांसिस ने अपने रविवारीय देवदूत प्रार्थना के पूर्व सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi il Vangelo ci presenta Gesù sulla barca con i discepoli nel lago di Tiberiade. Arriva all'improvviso una forte tempesta e la barca rischia di affondare.
Priye bhaiyo evam behno, shubh ravivar. आज का सुसमाचार हमें यीशु को तबेरियस झील में उनके शिष्यों के संग नाव में प्रस्तुत करता है। अचानक एक प्रचंड आंधी उठती और नाव डूबने की स्थिति में आ जाती है। यीशु जो सो रहे होते उठते हैं और वायु को डांटते और सभी चीजें पुनः शांत हो जाती हैं। संत पापा ने कहा कि वास्तव में यीशु आंधी में नहीं जगते, बल्कि उन्हें जगाया जाता है। शिष्य डर के मारे उन्हें जगाते हैं। उसकी अगली शाम को यीशु स्वयं अपने शिष्यों को नाव में चढ़ते हुए झील पार करने को कहते हैं। शिष्यगण अपने में मंजे हुए थे, क्योंकि वे मछुआरे थे और वे उन परिस्थितियों में जीवन यापन करते थे, लेकिन एक तूफान उन्हें मुश्किल में डाल देता है। संत पापा ने कहा,
Sembra che Gesù voglia metterli alla prova.
ऐसा प्रतीत होता है कि यीशु उनकी परीक्षा ले रहे होते हैं। यद्यपि वे उन्हें अकेले नहीं छोड़ते हैं, वे उनके संग नाव में होते हैं, अपने में शांत, वास्तव में वे आराम से सो जाते हैं, और जब तूफान आता है वे उन्हें अपनी उपस्थिति से सुनिश्चित कराते हैं, वे उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, वे उन्हें अपने विश्वास में और अधिक मजबूत होने को कहते और जोखिम के पार ले जाते हैं। यीशु उनके संग ऐसा क्यों करते हैं? संत पापा ने कहा,
Rafforzare la fede dei discepoli e per renderli più coraggiosi.
वे अपने शिष्यों के विश्वास को मजबूत करते हैं और उन्हें अधिक साहसिक बनाते हैं। वास्तव में वे इस अनुभव के द्वारा अपने में यीशु की शक्ति और अपने बीच में उनकी उपस्थिति से अवगत होते हैं। इस भांति वे जीवन की कठिनाइयों और मुसीबतों का सामना करने हेतु अपने को और अधिक तैयार और मजबूत पाते हैं। यहाँ तक कि वे सुसमाचार की घोषणा हेतु अपने को बाहर ले जाने के भय पर विजयी होते हैं। यीशु के संग इस मुसीबत पर उनका विजयी होना उन्हें जीवन की अन्य दूसरी बहुत सारी बातों का सामना करने के योग्य बनाता है। यहाँ तक कि वे दूसरों के बीच सुसमाचार को ले जाने में क्रूस उठाने और शहीद होने को भी तैयार हो जाते हैं। संत पापा ने कहा कि यीशु हम सबों के संग भी ऐसा ही करते हैं, विशेषकर अपने यूखरिस्त के द्वारा। वे हमें अपने चारों ओर एकत्रित करते हैं, वे हमें अपने वचनों को देते, वे हमें अपने शरीर और रक्त से पोषित करते और हमें बाहर जाने का निमंत्रण देते हैं, जिससे हम अपने उन सारी चीजों को बांट सकें जिसे हमने सुना है, उन चीजों को जिन्हें हमने एक दूसरे के संग अपने दैनिक जीवन में पाया है। चाहे यह हमारे लिए मुश्किल भरा क्यों ना हो।
Gesù non ci risparmia le contrarietà, ma senza abbandonarci ci aiuta a affrontarle.
वे हमारे जीवन में आने वाले तूफानों का विरोध नहीं करते, बल्कि वे हमारी सहायता करते हैं जिससे हम चीजों का सामना कर सकें। इस भांति हम भी उनकी सहायता से जीवन की मुसीबतों में विजयी होते हुए उनके संग अपने को और अधिक रूप में संयुक्त करना सीखते हैं। हम अपने को उनकी शक्ति में समर्पित करते जो हमें हमारी क्षमताओं से परे ले जाती है, और हम अपनी अनिश्चितताओं और हिचकिचाहटों, बंद होने और चिंताओं पर विजयी होते हैं। हम अपने में साहस का अनुभव करते और अपने हृदय के खुलेपन में लोगों को ईश्वरीय राज्य की उपस्थिति के बारे में बतलाते हैं जो हमारे बीच में उपस्थित है। इस भांति हम यीशु के संग एक साथ मिलकर इसे बढ़ने में मदद करते हैं जो सारी अड़चनों के बाद भी अपने में परे जाता है। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि इस भांति हम अपने में पूछें,
Nei momenti di prova so fare memoria delle volte in cui ho sperimentato nella mia vita la presenza e l'aiuto del Signore, pensiamo.
मुसीबतों की घड़ी में क्या मैं उन समयों की याद करता हूँ जब मैंने अपने जीवन में ईश्वर की सहायता का अनुभव किया? जब एक तूफान उठता है तो क्या मैं अपने को उसकी आंधी में निराश पाता हूँ, या प्रार्थना में बने रहते हुए यीशु के संग संयुक्त रहता हूँ? उन्होंने कहा कि हमारे अंदर बहुत सारी तूफाने हैं, क्या हम प्रार्थना शांति में उनके वचनों को सुनते हुए आराधना और भ्रातृत्व की भावना में विश्वास को साझा करते हुए उनसे आने वाली शांति और चैन का अनुभव करते हैं? मरियम, जिन्होंने ईश्वर की इच्छा को नम्रता और साहस में ग्रहण किया, हमारे जीवन की कठिन परिस्थितियों में हमें शांति में अपने को उनके हाथों समर्पित होने की कृपा प्रदान करें। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने सभों के संग देवदूत प्रार्थना का पाठ किया और सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filii, Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, saluto tutti voi romani e pellegrini dall'Italia e dei vari paesi.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा फ्रांसिस ने सभों का पुनः अभिवादन किया। उन्होंने रोम और विभिन्न देशों से आए हुए, विशेषकर संत बोई दे लेब्रगट, बार्सिलोना और बारी के विश्वासियों का स्वागत किया। उन्होंने जीवन का चुनाव करने हेतु प्रदर्शन में सहभागी हो रहे प्रतिभागियों, अल्पीने के गायक दल और बुल्लाते के साइकिल चालकों का अभिवादन किया। उन्होंने युद्धग्रस्त देशों यूक्रेन, फिलिस्तीन और इसराइल की याद करते हुए शांति के लिए निरंतर प्रार्थना का अनुरोध किया। संत पापा ने गाजा और उत्तरी कोंगो की भी याद की। पवित्र आत्मा शासकों को विवेक और उत्तरदायित्व के भाव से भर दे जिससे वे शांति स्थापना हेतु पहल करें। संत पापा ने एक फ्रांसिस्कन पुरोहित मैनुएल ब्लांको के प्रभु में सो जाने की घोषणा की, जो रोम के शांति क्वारांता मर्तिरी गिरजाघर में विगत 44 सालों से रह रहे थे। वे एक अधिकारी, दंडमोचक और सलाहकार के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। संत पापा फ्रांसिस ने सभी फ्रांसिस्कन धर्म समाजों की याद की और उनके प्रति अपने कृतज्ञता के भाव प्रकट किए। विदित हो कि दिवंगत पुरोहित मैनुएल ब्लांको के पास संत पापा फ्रांसिस पाप स्वीकार संस्कार हेतु जाया करते थे। अंत में संत पापा फ्रांसिस ने सभों को रविवार ये शुभकामनाएं अर्पित की और अपने लिए प्रार्थना का निवेदन करते हुए सभों से विदा ली।
Tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Hey, boy. वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने 155 वर्षों की निस्वार्थ सेवा के लिए संत पेत्रुस सर्कल संघ की प्रशंसा की। आपने अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, करुणा और कोमलता के साथ कलीसिया की बहुत सेवा की है और रोम शहर को जयंती के लिए तैयार भी किया है। संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार की सुबह वाटिकन में संत पेत्रुस सर्कल स्वयंसेवी संघ के सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया, जो 155 वर्षों से कलीसिया की उदार गतिविधियों का समर्थन कर रहा है और सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहा है। परमाध्यक्षों द्वारा संत पेत्रुस सर्कल संघ के साथ अपने पूरे इतिहास में की गई मुलाकातों को दर्ज करने वाली पुस्तक को उपहार में दिए जाने पर विचार करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने स्वीकार किया कि इस तरह के संग्रह व्यक्ति की जड़ों को याद रखने में मदद करते हैं, जो कि मौलिक है। उन्होंने कहा, जड़ों के बिना कोई जीवन और कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि पत्तियों की समृद्धि जड़ों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए संत पापा ने उन्हें हमेशा अपनी जड़ों को संजो कर रखने और उन्हें कभी भी बंजर नहीं होने देने के लिए प्रोत्साहित किया। संत पापा फ्रांसिस ने 2025 में आने वाली आशा की जयंती को याद किया और बताया कि यह किस तरह दान का अवसर होना चाहिए। उन्होंने कहा, रोम में आने वाले तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को ख्रिस्त या दान की हवा में सांस लेनी चाहिए, जो केवल सहायता नहीं है बल्कि निकटता और साझा करने के माध्यम से और बिना प्रचार के और स्पॉटलाइट के माध्यम से गरिमा की देखभाल है। अंत में संत पापा फ्रांसिस अपने से पहले के सभी लोगों और उनके परिवारों को आशीर्वाद देकर और उन्हें सालुस पोपोली रोमानी रोमवासियों की संरक्षिका की सुरक्षा में सौंपते हुए अपना संदेश समाप्त किया। जुबली वर्ष 2025 को सुयोग्य रीति से मनाने के लिए संत पापा फ्रांसिस ने वर्ष 2024 को प्रार्थना का वर्ष घोषित किया। संत पापा ने विभिन्न पहलों के माध्यम से सभी विश्वासियों को प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एक्स पर लिखा, अपना ख्याल रखना न भूलें, बाहरी तौर पर नहीं बल्कि अपने सबसे कीमती हिस्से का, अपनी आत्मा, अपने दिल का, इसे शांति से सुनने का प्रयास करें और मौन रहकर अपने हृदय की लय का अनुसरण करते हुए ईश्वर से बातें करें। और संत पापा फ्रांसिस ने यूक्रेन के एक अस्पताल को तीसरी एम्बुलेंस दान दी। संत पापा फ्रांसिस की प्रार्थना और निकटता उन लोगों की मदद करने में ठोस हो जाती है जो युद्ध के विनाशकारी प्रभावों से पीड़ित है। संत पापा के दानदाता कार्डिनल कोनराड क्राइस्की यूक्रेन के केंद्रीय अस्पताल में मोबाइल पुनर्वासन केंद्र में सुसज्जित एम्बुलेंस पहुँचाने जाएंगे। वे अपने साथ वाटिकन फार्मेसी और अगुस्टिनो जेमेली पॉलीक्लिनिक की फार्मेसी से बड़ी मात्रा में आवश्यक और जीवन रक्षक दवाएं भी ले जाएंगे। यूक्रेन के टेर्नोपोली क्षेत्र में युद्ध जारी रहने के कारण हर दिन कई काफिले घायल सैनिकों और नागरिकों को लेने पहुंचते हैं, जो रूस के साथ सीमा क्षेत्र से भागने के लिए मजबूर हैं। यह एम्बुलेंस घायल लोगों के बचावकर्ताओं की सहायता के लिए एक वैद्य उपकरण भी होगी। इस नए मिशन के दौरान संत पापा की ओर से उनके दानदाता कार्डिनल क्राइस की युद्ध का आघात सहे उन लोगों के अभिन्न शारीरिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास के लिए कामियानिट्स पोलस्की के रोमन कैथोलिक प्रांत में बनाए गए संत जॉन पॉल द्वितीय पुनर्वास केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। संत पापा फ्रांसिस द्वारा वांछित अन्य समान केंद्रों की तरह चर्च इन नीड संस्थान और कुछ परमधर्म पीठ या संस्थानों के योगदान से बनाया गया है। उधर वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन लेबनान की 5 दिवसीय यात्रा पर निकले हैं, जहां वे सॉवरेन ऑर्डर ऑफ माल्टा के मानवीय संरचनाओं का दौरा करेंगे। कार्डिनल पारोलिन ने 23 जून को मेरोनाइट पाट्रियाकेट के अधिकारियों, स्थानीय कलीसिया प्राधिधर्माध्यक्ष और धार्मिक नेताओं के साथ बैठकें की। आज 24 जून को वाटिकन राज्य सचिव लेबनान के ऑर्डर के राजदूत मरिया अमेरिका कार्टिस और राज्य के अधिकारियों की उपस्थिति में माल्टा के आदेश के संरक्षक संत जॉन बपतिस्मा का पर्व का पवित्र मिस्सा समारोह का अनुष्ठान करेंगे। कार्डिनल पारोलिन ऑर्डर ऑफ लेबनानी एसोसिएशन द्वारा संचालित कुछ मानवीय केंद्रों का दौरा करने और कुछ उदार गतिविधियों में भाग लेने के बाद 27 जून को लेबनान से प्रस्थान करेंगे। उधर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर इजरायली सेना पर एक घायल फिलिस्तीनी व्यक्ति को मानव ढाल के रूप में दुर्व्यवहार करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनदेखी करने का आरोप लगाया। इजरायली सेना ने स्वीकार किया कि उनके बलों ने वेस्ट बैंक के एक शहर जेनिन में एक छापे के दौरान एक घायल फिलिस्तीनी व्यक्ति को अपने वाहन के सामने बांधकर प्रोटोकॉल तोड़ा। इस घटना को एक मोबाइल फोन द्वारा फिल्माया गया था और सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया गया था। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि छापे के दौरान बंदूक की लड़ाई में वह व्यक्ति घायल हो गया था, जिसमें वह एक संदिग्ध था। इस बीच युद्ध विराम समझौते और हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की वापसी की मांग के लिए हजारों की संख्या में इसराइली तेल अवीव में एकत्रित हुए हैं। कथित तौर पर यह गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे बड़ा सरकार विरोधी प्रदर्शन था। दूसरी ओर पूर्वी लेबनान के पश्चिम बेका जिले में स्थित अल खियारा गांव में एक वाहन को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हवाई हमले में सप्ताहांत में इस्लामिक समूह के एक नेता की मौत हो गई। पिछले 6 महीनों में लेबनान इसराइल सीमा पर तनाव बढ़ गया है। इस बीच इराक में एक शिया मिलिशिया ने रविवार को उत्तरी इसराइल और भूमध्य सागर में हाइफा बंदरगाह पर 5 जहाजों पर यमन के हौती समूह के साथ संयुक्त ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। उधर रूसी अधिकारियों ने रविवार को कहा कि रूस द्वारा कब्जा की गए क्रीमिया के बंदरगाह शहर सेवस्तोपोल में 5 यूक्रेनी मिसाइलों को मार गिराए जाने पर मलबे के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। लगभग 100 लोग कथित तौर पर घायल हुए हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगी। नमस्कार।